इस तर्क भाषा ग्रुप में पढ़ने वाले सारे बच्चों को मेरी तरफ से बहुत बहुत प्यार है और आशीर्वाद है। आप लोग इस तर्क भाषा को बड़े ही मन से पढ़ें और समझें, ऐसा मेरा विश्वास है। एक काम करना है कि अपने सामने में पुस्तक भी रखनी है और कागज़ और कलम भी रखनी है। मैं आज आपको भूमिका के तौर पर कुछ सिखाने वाला हूँ, बताने वाला हूँ। परीक्षा में 2 नंबर के जो प्रश्न बनते हैं उसमें कुछ इस तरह की बातें जो पूछी जाती हैं इस पुस्तक के संदर्भ में, उन बातों को भी मैं आज बताऊंगा और कोशिश करूंगा कि मंगलाचरण आज कम से कम हो जाए। उसके बाद अगले दिन से हम फिर आगे के ग्रंथ को पढ़ाऊंगा। ये जो तर्क भाषा ग्रंथ है यह दर्शन शास्त्र का ग्रंथ है। आपने अंग्रेजी में फिलॉसफी शब्द सुना होगा, दर्शन को ही अंग्रेजी में फिलॉसफी कहते हैं। वह दोनों प्रकार का है, भारतीय भी है और पाश्चात्य भी है, वैदेशिक भी है। तो भारतीय जो दर्शन है उसको इंडियन फिलॉसफी कहते हैं। भारतीय दर्शन में 2 प्रकार का विभाजन होता है, एक आस्तिक दर्शन के रूप में और एक नास्तिक दर्शन के रूप में। तो आस्तिक दर्शन 6 प्रकार का माना गया है और नास्तिक दर्शन को भी 6 प्रकार का माना गया है। टोटल मिला करके 12 भारतीय दर्शन होते हैं। आस्तिक दर्शन 6 प्रकार का और नास्तिक दर्शन 6 प्रकार का जो मैंने बताया, बहुत ही संक्षेप में समझ लीजिए कि जो वेद को प्रमाण मानता है वह आस्तिक दर्शन है और जो वेद को प्रमाण नहीं मानता उसे नास्तिक दर्शन कहा जाता है। तो मेरा जो पढ़ाने का ये ग्रंथ है यह आस्तिक दर्शन के अंतर्गत आता है। आस्तिक दर्शन जो 6 प्रकार के हैं, आप चाहें तो उसका नाम नोट कर सकते हैं। मैं बहुत ही धीरे धीरे नाम बताऊंगा। ये जो 6 आस्तिक दर्शन है उसमें पहला है सांख्य दर्शन, केवल सांख्य लिखने से काम चल जाएगा। दूसरा है योग दर्शन, तीसरा है न्याय दर्शन, चौथा है वैशेषिक दर्शन, पांचवा है मीमांसा दर्शन और छठवां है वेदांत दर्शन। एक बार मैं और रिपीट करता हूँ, सांख्य, योग, न्याय, वैशेषिक, मीमांसा, वेदांत। इसमें न्याय दर्शन जो है, जिसको कि हमने सांख्य योग के बाद न्याय दर्शन 3रे नंबर पर बताया है, यह जो आपका ग्रंथ है सिलेबस वाला, यह न्याय दर्शन के अंतर्गत आता है। तो हमने एडमिशन तो लिया है व्याकरण पढ़ने के लिए, साहित्य पढ़ने के लिए, ज्योतिष पढ़ने के लिए, लेकिन हम दर्शन क्यों पढ़ना शुरू करेंगे ये मन में आपके आता होगा। तो ये समझ लीजिए कि दर्शन का ज्ञान जो है वह सभी शास्त्रों को समझने के लिए उपयोगी होता है। अगर दर्शन का नॉलेज हमें हो गया तो बाकी शास्त्र जब हम पढ़ना शुरू करेंगे तो उसमें हमें इससे बड़ी सहायता मिलेगी। और दूसरी बात ये है कि कुछ ऐसे प्रश्न हैं जो समाज में लोग पूछते रहते हैं, जो ही समझेंगे कि आप संस्कृत पढ़ते हो तो वो आपसे पूछेंगे कि ईश्वर क्या है, आत्मा क्या है, परमात्मा क्या है, सृष्टि क्या है, माया क्या है, प्राण क्या है, शरीर क्या है, संसार क्या है, माया क्या है, इस तरह के तमाम प्रश्न होते हैं। तो आप संस्कृत पढ़ने के नाते आपको इन सब बातों का जवाब देना होता है समाज में। तो दोनों ही चीज़ें हैं, आपको अग्रिम पढ़ाई पढ़ने के लिए भी इसकी आवश्यकता है, इससे सहायता मिलेगी, और दूसरा समाज में जो प्रश्न आते हैं या आपके खुद मन में जो प्रश्न आते होंगे उन प्रश्नों का जवाब भी जो है दर्शन शास्त्र के अध्ययन से मिल जाता है। दर्शन शब्द की अगर व्युत्पत्ति सोचें तो बहुत ही छोटी व्युत्पत्ति है, दृश्यते यथार्थ तत्त्वम् येन, दृश्य अगर लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, दृश्यते यथार्थ तत्त्वम् येन इति दर्शनम्, दृश्यते यथार्थ तत्त्वम् येन इति दर्शनम्। अर्थ आसान ही है कि यथार्थ तत्व को जिससे देखा जाए, देखना का अर्थ यहाँ पर समझना है कि यथार्थ तत्व को जिस शास्त्र के द्वारा समझा जाता है उसे दर्शन शास्त्र कहते हैं। फिर से बताता हूँ, यथार्थ तत्व को, यथार्थ तत्व माने वास्तविक तत्व, तो यथार्थ तत्व को जिस शास्त्र के द्वारा समझा जाए उसे दर्शन शास्त्र कहते हैं। और यह जो भारतीय दर्शन शास्त्र है उसके 12 भेद हैं, 6 आस्तिक दर्शन है और 6 नास्तिक दर्शन है। हमने 6 आस्तिक दर्शनों का नाम बता दिया आपको, फिर से कहता हूँ, सांख्य, योग, न्याय, वैशेषिक, मीमांसा और वेदांत। तो आपका जो ये ग्रंथ है तर्क भाषा ग्रंथ, ये किस दर्शन के अंतर्गत आता है? न्याय दर्शन के अंतर्गत आता है। अब ये जानकारी हमें मिल गई कि दर्शन क्या है, तो जिस शास्त्र के द्वारा यथार्थ तत्व का ज्ञान हो उसे हम दर्शन शास्त्र कहते हैं। और इस दर्शन शास्त्र के 12 भेद हैं, 6 आस्तिक, 6 नास्तिक। उसमें न्याय दर्शन जो है उसके बारे में हमें इस ग्रंथ में पढ़ाई करनी है। इतनी जब जानकारी हमें मिल गई है तो अब फिर हम थोड़ा समझते हैं कि ये न्याय दर्शन क्या है। तो जैसे अभी हमने आपको बताया, दृश्यते यथार्थ तत्त्वम् येन इति दर्शनम्, इसी तरह से न्याय के लिए भी जो है ना आप एक लक्षण लिख लीजिए। परीक्षा में भी पूछेगा कि न्याय किसे कहते हैं, तो आपको ये पंक्ति लिखनी पड़ेगी। तो लिखिए, प्रमाणैः अर्थ परीक्षणम् न्यायः, प्रमाणैः अर्थ परीक्षणम् न्यायः, प्रमाणैः अर्थ परीक्षणम् न्यायः। इसका मतलब हुआ प्रमाणैः माने प्रमाणों के द्वारा, अर्थ परीक्षणम् अर्थ का जो परीक्षण किया जाता है, अर्थ की जो परीक्षा की जाती है माने क्या, कौन सा अर्थ सही है कौन सा अर्थ गलत है, वह जिस दर्शन के द्वारा होता है उसे न्याय दर्शन कहते हैं। माने प्रमाणों के द्वारा अर्थ का परीक्षण जिस दर्शन से हो उसे न्याय दर्शन कहते हैं। फिर से बताता हूँ, प्रमाणों के द्वारा अर्थ का परीक्षण जिस दर्शन के द्वारा होता है उसे हम न्याय दर्शन कहते हैं। तो न्याय दर्शन किसे कहते हैं ये भी हमें समझ में आया। अब न्याय दर्शन के प्रवर्तक आचार्य कौन है उसे उनका नाम जानना है। प्रवर्तक आचार्य कहते हैं, अंग्रेजी में इसको कहना चाहें तो फाउंडर कहेंगे, माने सबसे पहले आचार्य जिन्होंने इस दर्शन की नींव रखी हो। तो दर्शन में क्या है, तीन चीज़ें होती हैं मौलिक चीज़ें। एक तो पहले सूत्र साहित्य हो, सूत्र बनाया जाता है, उसके बाद वार्तिक बनाया जाता है, उसके बाद भाष्य बनाया जाता है। तो जो सूत्रकार होते हैं वो आदि होते हैं, तो उन्हीं को प्रवर्तक माना जाता है। तो न्याय दर्शन के जो सूत्रकार हैं उनका नाम है महर्षि गौतम। तो प्रवर्तक आचार्य इनको कहा जाता है न्याय दर्शन का, महर्षि गौतम को। तो ये भी हमने नोट कर लिया कि न्याय दर्शन के प्रवर्तक आचार्य कौन है, महर्षि गौतम है। अब इस पुस्तक के जो रचयिता हैं उनका नाम जानना है और उनके बारे में थोड़े से पता करना है, ये भी 2 नंबर के प्रश्न में पूछा जाता है। तो तर्क भाषा पुस्तक के जो रचयिता हैं उनका नाम है केशव मिश्र, आपके पास जो पुस्तक होगी उसमें भी लिखा होगा ऊपर में ही। तो तर्क भाषा के रचयिता कौन है? केशव मिश्र है। ये केशव मिश्र जी के बारे में बहुत परिचय नहीं मिलता है। क्या था ना कि पहले के समय में जो विद्वान लोग होते थे, जो ग्रंथ लिखते थे, वो अपना परिचय नहीं बताते थे। वो समझते थे कि आत्मश्लाघा हो जाएगी, माने अपना अपनी प्रशंसा करना, अपने बारे में बताना, इसको ये जो है ना अच्छी बात वो लोग नहीं मानते थे। तो कहीं कहीं से उनके बारे में कुछ न कुछ जो है जो परिचय मिलता है, उसके आधार पर जो है केशव मिश्र के बारे में थोड़ी सी जानकारी है, उसको आप नोट कर लीजिए। केशव मिश्र जी का जन्म जो है 1275 ईस्वी में मिथिला में हुआ था। 1275 1275 ईस्वी में मिथिला में केशव मिश्र जी का जन्म हुआ था। इनके पिता का नाम बलभद्र मिश्र था। केशव मिश्र जी के पिता का नाम बलभद्र मिश्र था। इनके दो बड़े भाई थे, एक का नाम था विश्वनाथ मिश्र और दूसरे का नाम था पद्मनाभ मिश्र। एक का नाम था बड़े भाई का विश्वनाथ मिश्र और दूसरे का नाम था पद्मनाभ मिश्र। तो इसमें दूसरे वाले जो हैं पद्मनाभ मिश्र जी, इन्हीं से इन्होंने न्याय दर्शन का अध्ययन किया था। इनके गुरु जी थे वो, अपने बड़े भाई से ही इन्होंने ही पढ़ा था, पद्मनाभ मिश्र जी से। तो ये इनके गुरु जी हैं। बस इतनी सी जानकारी जो है केशव मिश्र जी के बारे में उपलब्ध होती है कि इनका जन्म 1275 ईस्वी के लगभग मिथिला में हुआ। इनके पिताजी का नाम बलभद्र मिश्र है और इनके दो बड़े भाई थे विश्वनाथ मिश्र और पद्मनाभ मिश्र। उनमें से पद्मनाभ मिश्र जी से इन्होंने न्याय दर्शन का ज्ञान प्राप्त किया था, उनसे न्याय दर्शन को पढ़ा था। अब ये जो छोटी मोटी जानकारी होती है शुरुआती, उसको मैंने बता दिया। अब मैं आपको ग्रंथ का जो ये मंगलाचरण है इसका मैं उच्चारण करूँगा, धीरे धीरे करूँगा। आपने जो याद किया होगा उसमें अगर कहीं अशुद्धि भी होगी तो उसको आप इससे सुधार कर लीजिएगा। बालोपि यो न्यायनाये प्रवेशम, बालोपि यो न्यायनये प्रवेशम अल्पेन वांछत्यलसः श्रुतेन। फिर से बोलता हूँ, बालोपि यो न्यायनये प्रवेशम अल्पेन, इसको मिलाकर के भी पढ़ सकते हैं प्रवेशम अल्पेन। फिर से बोलता हूँ, बालोपि यो न्यायनये प्रवेशम अल्पेन वांछत्यलसः श्रुतेन संक्षिप्त युक्तन्वित, संक्षिप्त युक्तन्वित तर्क भाषा, संक्षिप्त युक्त युक्त्यन्वित तर्क भाषा प्रकाश्यते तस्य कृते मयैषा, प्रकाश्यते तस्य कृते मयैषा। अब एक बार फिर से इसको सुन लीजिए, बालोपि यो न्यायनये प्रवेश मल्पेन वांछत्यलसः श्रुतेन संक्षिप्त युक्त्यन्वित तर्क भाषा प्रकाश्यते तस्य कृते मयैषा। ये मंगलाचरण है, इसकी व्याख्या आज शायद मैं नहीं कर पाऊंगा, इसको अगले दिन के पाठ में करूंगा। लेकिन आप थोड़ा सा ये जान लीजिए कि किसी भी ग्रंथ की जब शुरुआत की जाती है, ऐसे आप अपने परिवार में समाज में भी देखते होंगे कि कोई भी अच्छा काम जब शुरू करते हैं तो उसमें मंगलाचरण किया जाता है, स्वस्ति वाचन होता है, शांति वाचन होता है। तो ऐसे ही जब इस ग्रंथ की शुरुआत केशव मिश्र जी ने की तो सबसे पहले मंगलाचरण को इन्होंने बनाया। ये मंगलाचरण इसलिए किया जाता है कि जो विघ्न आते हैं बीच में अच्छे कामों में, उस विघ्न का शमन हो जाए, और ग्रंथ जो हम रचना कर रहे हैं उसकी निर्विघ्न समाप्ति हो जाए। तो इस तरह, और तीसरा भी एक है प्रयोजन कि मंगलाचरण में ये भी बता दिया जाता है कि आपको इसमें, इस ग्रंथ के अंतर्गत क्या पढ़ना है, क्या समझना है। आपको जब तक ये नहीं पता हो कि हमें क्या पढ़ना है, क्या समझना है, तब तक उस ग्रंथ में पढ़ने में आपको अभिरुचि कैसे होगी। इसलिए मंगलाचरण किया जाता है। मेरा विश्वास है कि आप लोगों ने इस मंगलाचरण को जरूर याद किया होगा, और कल के पाठ में मैं मंगलाचरण की व्याख्या आपको बताऊंगा। आप इस ऑडियो को जब सुनेंगे, इसमें जो हमने लिखने के लिए कहा है वो लिखेंगे, और ये सब कुछ समझ में आया कि नहीं आया, ये आप इस ग्रुप में ज़रूर मैसेज करिए। जो कुछ अगर इसमें जानकारी और लेनी हो, कुछ अगर और पूछना हो, तो आप ग्रुप में मुझे मैसेज करिए, या तो मैं जवाब दूंगा, या आप लोग में से भी कोई चाहे तो उसका जवाब दे सकते हैं। इस तरह से आज का पाठ मैं इतने पर ही छोड़ता हूँ। फिर अगले दिन का पाठ मैं आपको भेजूंगा। ग्रुप में आप लोगों को अपनी प्रतिक्रिया जरूर देनी है, समझ में आया कि नहीं आया, और क्या क्या नहीं आया तो क्या नहीं आया वो आपको जरूर बताना है। ठीक, बहुत बहुत धन्यवाद।